संत नाभादास जी द्वारा लिखी हुई भक्तों की जीवन गाथा भक्तमाल, जिन्हें सरल भाषा में आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे अपने प्रभु जी के परम भक्त अरविंद चौधरी जी।
राधे राधे। राधे राधे। भक्तमाल श्रृंखला में हम आज चरित्र करते हैं श्री ध्रुव जी का। श्री ध्रुव जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं, ध्रुवपद आपको पता ही है, तो आज विस्तार से वर्णन करेंगे श्री ध्रुव जी का। श्री भक्तमाल की जय, भक्तमाल के सभी भक्तों की जय, भक्तमाल के सभी संतों की जय। हरि सो जग वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सो पंथ, सदगुरु सो सज्जन नहीं, भक्तमाल सो ग्रंथ। राजा मनु के पुत्र हुए हैं उत्तानपाद, उत्तानपाद के हुए हैं ध्रुव। उत्तानपाद की दो स्त्रियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति बड़ी थी, सुरुचि छोटी थी। तो जो सुरुचि थी उसके पुत्र हुए उत्तम, छोटी रानी के, और छोटी रानी से ही राजा उत्तानपाद ज़्यादा प्रेम करते थे। तो सीधी सी बात है, उसके पुत्र को भी प्रेम करेंगे। और जो बड़ी रानी थी सुनीति, उसके पुत्र हुए ध्रुव, तो ध्रुव को राजा उतना प्रेम नहीं करते थे। तो एक बार की बात है कि उत्तम को राजा अपनी गोद में बिठाकर सिंहासन पर खेल रहे थे। उसी समय ध्रुव भी वहाँ पर आया। तो ध्रुव ने महाराज से कहा कि मुझे भी पिताजी गोद में ले लीजिए आप। तो वहीं पे रानी खड़ी हुई थी सुरुचि। तो छोटी रानी ने ध्रुव को डांटते हुए कहा कि तुम्हें सिंहासन पर और राजा की गोद में बैठने के लिए पहले भगवान नारायण को प्रसन्न करना पड़ेगा। भगवान नारायण को प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगो कि मेरी कोख से पैदा हो तुम, तब यह सिंहासन मिलेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी माँ ने ऐसे कर्म नहीं किए हैं, उनकी कोख से पैदा होकर तुम इस सिंहासन पर बैठने के लायक हो। तो उसके मन में बड़ा क्रोध आया, ध्रुव को रोष उत्पन्न हुआ और वो सांसें चलने लगी उसकी, ऊपर नीचे, वहाँ से गुस्से में वहाँ से निकला वो और सीधे अपनी माँ सुनीति के पास आया और उससे सारा वृतांत बताया गुस्से में कि मेरे साथ छोटी माँ ने ऐसा किया है और राजा ने मुझे गोद में नहीं बिठाया। तो सुनीति ने कहा, बेटा ये सत्य कहा है, सुरुचि सच बोल रही है, क्योंकि उसके प्रारब्ध बड़े अच्छे हैं, उसने बड़े अच्छे कर्म किए होंगे तभी राजा उससे इतना प्रेम करता है, तभी उसके पुत्र को गोद में बिठा के खिलाता है। बेटा तू मेरा पुत्र है, मैंने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे, और ये भी उसने सच कहा है कि भगवान नारायण को यदि प्रसन्न कर लिया जाए तो कुछ भी मिल सकता है, फिर यही सिंहासन क्यों, भगवान नारायण की गोद मिल जाएगी तुम्हें, और भगवान नारायण एक बार तुम्हें कह दे कि ये सिंहासन तुम्हारा है तो बेटा कोई नहीं छीन सकता तुमसे। उसके मन में आ गया, अब वो गुस्से में तो था ही, उसने उसी समय अपनी माँ से कहा मुझे आशीर्वाद दीजिए कि भगवान नारायण प्रसन्न हो और मैं उनसे ही मांगूँ जो भी मांगना है। उसने कहा जा बेटा, भगवान सफल करे, तुझे भगवान के दर्शन हो। और वो उसी समय राजभवन से निकल गया, जंगल की ओर चला गया। माँ ने भी भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान इससे सद्बुद्धि प्रदान करना और हे भगवान इस पर कृपा रखना। छोटा सा बच्चा 5 साल का, कोई माँ जंगल में भेज दे, लेकिन सुनीति थी ऐसी, वो जानती थी कि भगवान ही एक ऐसे हैं जो कृपा कर सकते हैं, और अगर इसके मन में बैठ गई भगवान को मिलन की तो मिल जाएंगे, इसका कल्याण हो जाएगा। चला गया, घोर जंगल में पहुंच गया, घोर जंगल में इस आस से कि भगवान मुझे मिले, भगवान नारायण मुझे मिले। उसे ये नहीं पता था मुझे क्या मंत्र का जाप करना है, कैसे मुझे तप करना है, कुछ नहीं उसे ज्ञात था। बस वो ये पकड़ के चला गया अपने मन में दृढ़ता से कि मुझे भगवान नारायण से मिलना है। जंगलों में, घोर जंगलों में जाता रहा, तभी भगवान नारायण नारद जी प्रकट हुए। तो नारद ऋषि ने देख करके उनसे समझाया कि अरे भाई वापस चला जा, तू बालक है, तुझे कहाँ भगवान मिल जाएंगे, भगवान तो बड़े बड़े यति जो पूरा जीवन निकाल देते हैं जंगलों में उन्हें ना मिलते हैं, तुम्हें कहाँ से मिल जाएंगे भगवान, वापस चला जा, भगवान कोई ऐसे थोड़े ही हैं कि वो कुछ दिनों में भगवान प्रकट हो जाएंगे, मिल जाएंगे तो उनसे कुछ मांग लेगा और तेरा काम हो जाएगा, वापस लौट जा। पर ये लौटने को तैयार नहीं था। जो क्षत्रिय धर्म होता है ना, वो ऐसा ही है कि वो क्षत्रिय का खून है, अंदर उबाल आया उसके। तो नारद जी भी स्वयं कहते हैं कि वाह क्षत्रिय का खून कैसा होता है, कि इसके अंदर इसकी माँ के वचनों का जो डाह इसके अंदर उत्पन्न हुआ, उससे जो क्रोध आया है, उसके मारे भगवान से मिलन को चला गया। नारद जी को लग रहा था कि ये मेरे समझाने से मान जाएगा, अपने ध्रुव जी नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, मुझे भगवान से मिलना है, देवर्षि आप हटिए, रास्ता छोड़िए, मुझे जाना है। उसके इस दृढ़ संकल्प को देखकर नारद जी ने उसको विधि बताई कि ठीक है, अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो सुनो, उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादाक्षर मंत्र का उन्होंने जाप करने के लिए कहा और ध्यान की, भगवान की और तप की विधि बताई। उस विधि के अनुसार ही ध्रुव जी तप करने लगे। तो प्रथम माह में ध्रुव जी ने तीन तीन दिन के अंतराल पे, सिर्फ तीन दिन के बाद एक बार वो जो वहाँ से बेल और कैत के जो फल मिलते थे वो फल खाते थे, सिर्फ एक बार तीन दिन में। हर तीन दिन में पहले महीने उन्होंने ऐसा किया, दूसरे महीने में उन्होंने छः दिन के अंतराल पे सिर्फ सूखे पत्ते और जो घास फूस होती थी वो खाते थे, फल भी छोड़ दिए थे। तीसरे महीने में उन्होंने नौ दिन के अंतर पे सिर्फ एक बार जल पीते थे, नौ दिन के अंतर पे। चौथे महीने में 12 दिन के अंतर पे सिर्फ वायु पीना शुरू किया, सिर्फ वो वायु लेते थे, यानी सांस के द्वारा वायु ग्रहण करते थे और कुछ नहीं। और पांचवें महीने में उन्होंने वायु भी लेना छोड़ दी, यानी सांस लेना बंद कर दिया। ये सारी विधि बताई थी नारद जी ने और वो उनका योग सद गया, क्योंकि तप उनका चल रहा था, लगातार उनका जाप चल रहा था। कोई 24 घंटे भी लगातार जप कर ले भगवान का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस कलिकाल में, तो ऐसा ऋषि मुनि कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है कि यदि बिना एक सेकंड के विराम के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का या भगवान के किसी भी नाम का, राम राम कृष्ण कृष्ण का, 24 घंटे अनवरत बिना एक सेकंड गैप दिए भी 24 घंटे भजन कर ले तो भगवान प्रसन्न होंगे, दर्शन उनको हो जाएंगे, ऐसा सुना है मैंने। तो उनका तो पाँच महीने चल गए थे उनके, तो उन्होंने सांस की गति रोक दी। सांस की गति रुकी तो त्राहिमाम मच गया सृष्टि में, देवता लोग घबराने लगे। और जब छठा महीना आया, छठे महीने में उनका चित्ताकार भगवान श्री नारायण जी के साथ एकाकार हो गया, यानी उनके हृदय में भगवान श्री नारायण की वो मूर्ति बस गई और इनके सांस रुक गए। और जब सांस इनके रुके तो पूरी सृष्टि की हवा पानी बंद हो गया, हवा बंद हो गई पूरी सृष्टि की, त्राहिमाम देवताओं तक उनके सिंहासन हिलने लगे, देवताओं की भी हवा रुक गई। तो उन्होंने भगवान नारायण से, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, ये हो क्या रहा है? ब्रह्मा जी को तो पता था कि ध्रुव तपस्या कर रहे हैं, वो भगवान नारायण के पास गए, भगवान नारायण से प्रार्थना करी, महाराज जाके दर्शन दो, ये तो पूरी सृष्टि की इसने हवा रोक दी है, क्योंकि उसके सांस रुके हैं महीनों से एकाकार होकर, तो वायु की गति रुक गई थी, ऐसा तप किया था ध्रुव जी ने। तो छठे महीने में ही भगवान नारायण, जो उसके हृदय में जो मूर्ति बसी हुई थी, वो जो चित्त एकाकार करके खड़ा हुआ था, वही भगवान नारायण साक्षात सामने प्रकट हो गए। तो जब सामने भगवान आए तो उनके जो चित्त में थे वो मूर्ति विलुप्त हुई, वो विलुप्त हुई तो इन्होंने नाक खोली तो भगवान सामने थे। सामने भगवान को देख करके इन्होंने दंडवत चरणों में गिरे और भगवान को देख करके इनसे बोला नहीं जा रहा है, प्रेम इतना भगवान को देख के हो गया है सामने, इस बोलने की कोई हिम्मत नहीं, और छोटे से बालक हैं, स्तुति करना कुछ आती नहीं है भगवान की। तो भगवान नारायण ने अपना शंख इनकी गाल को छुआ दिया, गाल को शंख छूते ही इनको सारे वेदों का ज्ञान हो गया। तो वेद की स्तुति ध्रुव जी ने भगवान की, भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न थे, भगवान ने कहा वरदान तुम्हारे लिए। ये बोला महाराज अब कुछ वरदान नहीं चाहिए, अब तो आप मिल गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, तुमने जिस निमित्त से मेरी आराधना की है, मुझे प्रसन्न किया है, वो तो हम तुम्हें देंगे, वही नहीं हम तुम्हें ध्रुव पद प्रदान करते हैं जो कल्प कल्प के अंत तक भी चलता है, मतलब सारे लोक नष्ट हो जाते हैं लेकिन ध्रुव पद तब तक भी स्थिर रहता है, कई कल्पों के तक ध्रुव पद जो है स्थिर रहेगा, कितने नक्षत्र जाएंगे, कितने चंद्रमा चले जाएंगे, सूर्य चले जाएंगे, लेकिन ध्रुव पद जो का तो रहेगा। तो ऐसा ध्रुव पद उन्होंने दिया और ध्रुव जी को कहा कि तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे। तो ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। जब भगवान प्रकट हुए और इनको स्पर्श करके गोद में बिठा के भगवान चले गए, तो ये संदेश नारद जी ने दे दिया उत्तानपाद को। अच्छा, उत्तानपाद उधर बेचैन हो रहे थे राजा, ये देख करके कि वो जंगल में अकेला चला गया और हाय मैं कैसा स्त्री में आसक्त कि मैंने अपने पुत्र को ऐसे भेज दिया, तो उसने अपनी स्त्री को भी डांटा था। जब नारद जी ने समाचार दिया कि उनको भगवान की प्राप्ति हो गई है, तो वो अपने राज्य में से पूरा मतलब रथ को लेकर के उनकी आगवानी ध्रुव जी को जंगल में लेने के लिए पहुँच गए। इधर जब सुरुचि को पता चला इस बात का, तो उसने भी ध्रुव जी से क्षमा मांगी कि मेरे कारण आपको, वो बोला रहे आपके कारण तो माता मुझे भगवान मिल गए, तो आप तो मेरे लिए महान हैं। और सबने सहर्ष ध्रुव जी को राजपद पे बैठाया और राज्य अभिषेक ध्रुव जी का किया, तो ध्रुव जी हुए राजा। अच्छा, अभी हुआ यूं कि एक बार जब राजा बन गए ये, तो कुछ यक्षों ने उत्तम को मार दिया जंगल में। वो जंगल में गए हुए थे तो यक्ष मिले, यक्ष ने मार दिया। उत्तम की मृत्यु का समाचार सुनकर जो उनकी माता थी सुरुचि, वो भी मर गई, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब ध्रुव जी ने यक्षों पर आक्रमण किया और बहुत सारे यक्षों को मार दिया, मार रहे थे, लगातार युद्ध चल रहा था। तो इस बीच मनु जी जो इनके दादा थे, मनु जी प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव जी को समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, निरपराध यक्षों को क्यों मार रहे हो, और जिसकी भी मृत्यु होती है वो उसके कर्मों के अनुसार होती है, उत्तम को उसकी उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिला है, और जो यक्ष मर चुके हैं उनको रोक दो, वो अपने कर्मों के अनुसार गए, आगे इस युद्ध को यहीं पर विराम दो। अपने दादा की बात सुनकर उन्होंने क्षमा मांगी कि मुझसे भूल हुई महाराज, मैं तो खामखा शत्रुता मोल लेकर के निरपराध सही में शत्रुओं को मार रहा था, इसके लिए मुझे क्षमा करें। अब मनु जी प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया, और यक्ष के जो राजा होते हैं कुबेर जी भी प्रकट हुए। कुबेर जी भी प्रसन्न हुए कि जब उन्होंने अपना खेद व्यक्त किया ध्रुव जी ने कि मुझसे सही में मुझसे अपराध हुआ है कि मैंने द्वेष करके इनको मार डाला, तो कुबेर जी ने इनसे कहा कि आप वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए आपको। तो ध्रुव जी कहने लगे कि मुझे यही वरदान दो कि मैं हरि स्मरण मेरा नित्य बना रहे, मुझे कभी भी भगवान की ऐसा ना हो कि भगवान भूल जाए, हर क्षण मुझे भगवान याद रहे। तो उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। अब इनको भगवान की स्मृति निरंतर बनी रहती थी, भगवान इनके साथ स्वयं सत्संग करते थे, भगवान बैठते थे ध्रुव जी के साथ, बातें करते थे। तो एक दिन बातों बातों में भगवान से ध्रुव जी ने पूछा कि महाराज, नारद जी ने कहा है कि करोड़ों कल्पों तक भी तपस्या करके भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, भगवान नारायण नहीं मिल सकते करोड़ों कल्पों तक भी तपस्या करके, तो महाराज मुझे तो आप 6 महीने में मिल गए। तो भगवान मुस्कुराए कि तुम्हें ऐसा लगता है कि 6 महीने में मिल गए हम, तुमने भी करोड़ों करोड़ों जन्मों तक हमारी आराधना की है, हम तब मिले हैं। ये कहने लगे कैसे भगवान, मैं तो 6 महीने सिर्फ आराधना करी है आपकी। तो उन्होंने दिव्य दृष्टि दी कि तुम देखो पीछे, दिव्य दृष्टि दी तो उन्होंने अपने पूर्व के जन्म सारे दिखे, कंदराओं में कहीं पहाड़ों पे, कहीं नदियों के बीच में इन्होंने अपना शरीर सुखाया हुआ, कहीं मैदानों में, कहीं गुफाओं में, कितने इनके करोड़ों जन्म बीते हुए। इन्होंने जब देखा कि महाराज हाँ सही में, और फिर भगवान ने कहा कि सही में करोड़ों कल्पों तक भी तपस्या करके मैं प्राप्त नहीं होता, और ये बात सही है। संत कहते हैं, हमारे पुराण शास्त्र कहते हैं, भगवान मिलते हैं भगवद कृपा से, वो भगवान अपनी कृपा से या संतों की कृपा से ही मिल सकते हैं, अन्यथा किसी तप से भगवान नहीं मिल सकते। तप और साधना एक निमित्त है भगवान को प्राप्त करने का, उसके बाद भगवान स्वयं कृपा करके अपने आप को दे देते हैं। तो हमें आश्रित रहना चाहिए संतों के और भक्तों के और भगवान की कृपा के। तो भगवान की कृपा निरंतर बरस रही है, सब पे बरस रही है, हमें विश्वास करना है बस, तो हमें मिलेगी। तो ध्रुव चरित्र से जो हमें सीखने को मिलता है वो ये कि उत्तानपाद क्या है। उत्तानपाद ये महत्वाकांक्षी जीव है, सुरुचि और सुनीति ये दो पैर हैं, दो पग हैं जो मार्ग पर आगे चलते हैं। तो सुरुचि है अपनी रुचि के अनुसार चलना, तो हमारी रुचि तो हमें क्या भोग विलास चाहेंगे हम, तो भोग विलास हमें क्या देगा उत्तम, तो सुरुचि को क्या मिला उत्तम भोगविलास ही चाहिए हमें। सुनीति, अगर नीति के अनुसार आप चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्रुवपद, यानी हमें भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो यही ध्रुव चरित्र हमें संक्षेप में कहता है कि हमें अपनी रुचि को मारकर सुनीति के मार्ग पर चलकर भगवान की प्राप्ति करना चाहिए। तो अगले चरित्र में फिर मिलते हैं, तो तब तक के लिए विराम। राधे राधे, जय श्री हरि, भक्तमाल की जय, भगवान के सभी भक्तों संतों की जय, हरि शरणम।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।